چلیے سورة الانبیاء سترویں پارے کا آغاز ہے. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورة الانبیاء کو شروع کریں گے. سورة اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ, اور خاص طور پہ سورت کی خوبی کیا ہے کہ اس میں انبیاء کرام کی دعائیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں سے بھری ہوئی سورت ہے, اور اس میں ایک ایمان والے کا توکل علی اللہ بھی دکھتا ہے کہ مختلف حالات میں اللہ نے نبیوں کو جو دوچار کیا تو ان ساری چیزوں میں پڑھ کر انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. دیا تو اللہ نے دیا, جب تک اللہ نے نہیں دیا کسی اور در پہ نہیں جھکے. اور مکی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس میں آپ اور میں دیکھیں گے کہ ہر دور میں جب بھی اللہ کا پیغام لے کر کوئی نبی آیا تو اس کے ساتھ ایک ہی قسم کے حالات تھے. کل تک نبی آتے تھے, آج نبی تو نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے, لیکن یہ بتا دیے کہ جہاں بھی پیغام ہدایت پہنچے گا عام طور پہ حالات ویسے ہی ہوں گے کہ شروع میں لوگ اس کو جھٹلائیں گے, باپ دادا کے نام پہ جو طریقے چل رہے تھے اسی کو اپنے لیے سند سمجھیں گے, لیکن بالآخر اگر بات کرنے والوں کو یقین ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کا مرکزی مضمون توحید کی دعوت ہے جو انبیاء کرام دیتے رہے, اور خاص طور پہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جیسے حالات پہلے سے بھی ہوئے. آئیے شروع کرتے ہیں, اور اس صورت میں آپ کو حساب کتاب اور موت کا بہت تذکرہ ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں بار بار احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے اور تم نے اس کی نگاہوں سے خود کو دیکھنا ہے. اور اس صورت میں آپ کو یہ بھی دکھے گا کہ مختلف انبیاء کرام نے اپنی اس مختصر سی زندگی کو ایسا خوبصورت گزارا کہ ان کی آخرت بہت اچھی گزرے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیتا قلوبهم واسر النجوا. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت, اور وہ ہیں کہ غفلت میں ابھی منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا اس آیت کو سن کر. صحابہ کے دلوں پر تو یہ آیت بجلی بن کر گری. ایک صحابی نے کہیں سے ملا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے بھائی کو دینا چاہا کہ میرے پاس دو ہو گئے ہیں, تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے, یہ لے لے. اس نے کہا بہت شکریہ, میں لے لیتا, پر آج کی رات ہمارے نبی پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس نے دنیا میں ہماری رہی سہی دلچسپی بھی ختم کر دی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ ایک طرح والی ناسی حساب ہوں, کہ جب حساب کا وقت ہی قریب آ گیا ہے تو پھر اب میں نے اس کو لے کر کیا کرنا ہے. ذرا سا سوچئے, آپ کو مجھے اپنے اوپر اس بات کو لینا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کل قیامت آئے گی تو ہمارا عمل کیا ہوگا. اور قیامت قریب ہے, ہر وہ چیز جو چل پڑی وہ پہنچ جائے گی. جب یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ قیامت قریب ہے تو دنیا پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے لوگوں کی جو مصروفیات بتائی ہیں, لاہیتن قلوبہم, غفلت ہے, بیکار قسم کے مشغلے ہیں, کھیل کود ہیں, تماشے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر بندہ کیسے سوچے, یعنی میں کیسے جانوں کہ میں غفلت میں ہوں کہ نہیں. تو اس کا جواب مجھے میری روز مرہ کی دلچسپیوں سے ملے گا. ایک انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے نا اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اسی کے لیے وقت لگاتا ہے, اسی کے لیے مال لگاتا ہے. جیسے دنیا میں کوئی ڈگری لینی ہوتی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ لگائی جاتی ہے, اور ہر وہ چیز پہ جو راستے میں رکاوٹ بنے اس کو انسان پیچھے کرتا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو مقصد سے غافل کر دے इंसान उसको हटाता है। बिल्कुल अगर मुझे आपको ये यकीन आ गया कि मेरा और आपका हिसाब करीब है, तो हम इस दुनिया को बढ़ाने की बजाय मुख्तसर करते रहेंगे। ज़रा सोचिए, आज अक्सर लोगों के इस किताब से दूर रहने की वजह क्या है? ये दुनिया, अक्सर लोग क्यों संजीदा नहीं होते दीन सीखने के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए? उसकी वजह बेकार मसरूफियात है। आप देखिए कि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने मुझे आपको दी, ये कितना बड़ा तोहफा है। हम कैसे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा। क्योंकि जो मेरा वक्त है ना, आपका वक्त है, ये सांसों में है, लम्हों की हिफाजत करनी है। एक एक मिनट में हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि कोई चलने वाला अगर चलने लगे तो एक मिनट में 200 गज चल सकता है, 250 लफ्ज़ बंदा बोल सकता है एक मिनट में, खून पूरे जिस्म से होकर वापस दिल में आ जाता है एक मिनट के अंदर। और ये तो आप जानते हैं कि ज़मीन एक मिनट में अपने महवर के गिर्द कितना चक्कर काटती है। तो एक एक मिनट कीमती है। आज से आपने मैंने अपने लम्हों की हिफाजत करनी है, वरना याद रखिए, बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। कल हमारे साथ ये ना हो जाए। हिसाब का लफ्ज़ हमेशा लोगों को मुश्किल लगता है। ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहल पर हिसाब किताब होता है। बचपन में ग्रेड्स होते हैं, कितने नंबर आए। फिर हफ्ते के दिन बच्चा गिनता है, छुट्टी कब होगी, संडे कब आएगा। ज़रा सा इंसान जवान होता है तो स्कोर गिनने लग जाता है, कितने रह गए, सन गिनेगा। फिर जॉब मिली, कितने पैसे मिलेंगे, एक घंटे के कितने पैसे। ज़रा सी मेच्योरिटी शुरू होती है 25-30 साल, तो फिगर्स एंड फैक्ट्स, दुनिया की आबादी कितनी, ये होगा वो होगा, ज़मीन कितने की आएगी। और 50-60 से ऊपर गए तो हर वक्त ज़मीनों के सौदे, घर इतने का और ज़मीन इतने की। अल्लाह ताला फरमाते एक तरह वाले नासी हिसाब हो। तुम दुनिया के फिगर गिनते रहते हो, कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे दिन कितने रह गए हैं? और आपको पता है कि ये सूरत सफ़रे हिजरत में नाजिल हुई थी। इसमें मक्की सूरतों की भी खूबियाँ और मदनी सूरतों की भी है। वजह क्या है कि अल्लाह ताला इस सूरत में आपको मुझे एक बहुत खूबसूरत सोच देते हैं कि अपने गुजरते हुए दिनों को महसूस करो। लेकिन आइए देखिए कि लोग इन बातों को कैसे लेते थे। अल्लाह ताला ने अगली ही आयत में जिक्र कर दिया, फरमाया, और जालिम आपस में सरगोशियां करते हैं, ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आंखों देखे जादू के फंदे में फंस जाओगे। यानी बातें छानते थे, छोड़ो ऐसी मायूसियों की बातें, अमल तो सुनते ही नहीं है, और सुनते भी हैं तो टूटे हुए दिल के साथ। अमल के लिए नहीं सुनते, बहसें करने के लिए सुनते हैं। उनको क्या लग रहा होता है कि अगर हमने इस किताब पे संजीदगी से गौर शुरू किया तो हमारी ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूल का जवाब, रसूल ने कहा, मेरा रब इस बात को खूब जानता है जो आसमानों ज़मीन में की जाए, वो समी और अलीम है। 3 सेकंड सोचे, अल्लाह को हर बात की खबर है, तो जो मैं करती हूँ उसका भी पता है, जो मैं देखती हूँ उसका भी पता है, जो मैं सोचती हूँ उसका भी पता है। वो कहते हैं बल्कि ये पूरा गंदा ख्वाब है, बल्कि ये इसकी मन घड़त है। देखिए बुखलाए हुए हैं, ये उस कुरान पे और नबी की बातों पे बातें छांट रहे हैं। कभी ख्वाब कहते थे, कभी मन घड़त कहते थे, नहीं बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी, जिस तरह पुराने ज़माने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए। हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान न लाई, अब क्या ये ईमान लाएंगे? यहाँ से आप देखिए कि नबी सल्लम पर कितना प्रेशर था लोगों की बातों का। आज हम थोड़ी सी बात पर परेशान होते हैं, तो परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। अरे नबी, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो, इन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। हर दौर में लोगों का एक ही मसला कि दीन के साथ दुनिया क्यों है, दीन के साथ खाना पीना क्यों है, और नबियों की बीवियां क्यों हैं, शादियां क्यों हुई। अल्लाह कहते हैं इस नबी ने शादियां कुछ अलग तो नहीं की, पहले नबियों की भी शादियां थी। तो याद रखिए ये वही घुटी भी सोच है कि दीन को एक डरबे में बंद कर दो और चंद मौलवियों को और चंद मुल्लानियों को उसमें बंद कर दो और उनको उधर मसरूफ करो ताकि वो हमारी एक्टिविटीज पे नजर ना रखें। हालांकि दीन की बात करने कराने वाला कभी लोगों को ये नहीं कहता कि तुम इन चीजों को छोड़ दो, असल बात यह है कि अपनी इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह के हुक्म का ताबे कर लो, फिर देख लो कि आखिरकार हमने इनके साथ अपने वादे पूरे किए और इन्हें और जिस जिस को हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। हाईलाइट कीजिएगा, लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। लोगो, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेज दी जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? हाईलाइट कीजिए इसको। इंसान को अपना जिक्र बहुत प्यारा लगता है। किसी अखबार में आपका नाम छप जाए, आप उसको खरीद लेते हैं, संभाल लेते हैं, बहाने बहाने से लोगों को दिखाते हैं। पढ़ी थी, देखी थी। खबरों में खबर छुप जाए आपके नाम पे और अल्लाह करे कि वो अच्छी हो। फिर देखिए, लोगों ने वो चीजें काट काट के टुकड़ों की सूरत में रखी होती हैं कि जिसमें आपका तस्करा हो। आइए जरा इस शिकायत पर एक सहाबी का, एक बुजुर्ग थे, उनका अमल सुनते हैं। एक जलीलुल कदर ताबई और अरब सरदार थे, अहनफ बिन कैस उनका नाम था। एक दिन बैठे हुए थे कि किसी ने यह आयत पढ़ी, लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम समझते नहीं हो? वो चौंक पड़े और कहा, जरा कुरान मजीद तो लाओ, इसमें मैं अपना तस्करा तलाश करूं, यानी मेरा जिक्र कहाँ है, और देखूं कि मैं किन लोगों के साथ हूं और किन से मुझे मुशाबहत है। उन्होंने कुरान मजीद को खोला, कुछ लोगों के पास से इनका गुजर हुआ जिनकी तारीफ ये की गई, कानु कलीलम मिनल लैली मा यहजाउन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून व फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम। सूरह ज़ारियात की आयत 17 से 19 तक है। तर्जमा क्या है? रात के थोड़े हिस्से में सोते थे और सहर के औकात में बख्शिश मांगा करते थे, और इनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों का हक होता था। अब ये सुनकर जरा सोच में पड़ गए। कुछ और लोग नजर आए जिनका हाल ये था, ततजाफ जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। सूरह सजदा की आयत 16 है। इनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो माल हमने इनको दिया इसमें से बहुत खर्च करते हैं। कुछ और लोग नजर आए जिनका हाल क्या था, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सूरह फुरकान की आयत 64 है। और जो अपने परवरदिगार के सामने सजदे करते और इज्ज़त और अदब के साथ खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। कुछ और लोग नजर आए जिनका तज़किरा इन अल्फाज़ में था, अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीन अल्गैज़ वलाफीन आनी नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरत आल इमरान 134। जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ करते हैं, और अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। कुछ और आगे के तो कुछ और लोग मिले जिनकी हालत ये थी, व युसिरून आला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा फ़ौलाइकहुमुल्मुफ्लिहून। सूरत हशर की आयत 9 है। और दूसरों को अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं ख्वाह इनको खुद कितनी जरूरत हो, और जो शख्स नफ्स की हिर्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग मुराद को पा लेने वाले होते हैं। कुछ और आगे गए तो कुछ और लोगों की ज़ियारत हुई जिनके अखलाक क्या थे, वल्लज़ीन यजतनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़दिबू हुम यग़फ़िरून। सूरत शूरा आयत 37। और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। अब ये भी सोचने लगे, आगे चले, वल्लज़ी नस्तजाबू ली रब्बिहिम व क़ामुस्सला तवामरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। सूरत शूरा आयत 38 है। और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल कर लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने इनको अता फरमाया इसमें से खर्च करते हैं। वो यहां पहुंचकर ठिठक कर रह गए और कहा, अब ये जुमले सुनिएगा फी ही जिक्रुकुम के ऊपर, ए अल्लाह मैं अपने हाल से वाकिफ हूं, मैं तो इन लोगों में कहीं नजर नहीं आता, मुझे तो अपने अंदर ये सारी खूबियां नहीं दिखती जो आपने कुरान में कही हैं। अब क्या किया, दूसरी तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया और अब इनको कुछ लोग नजर आए जिनका हाल ये था, इन्नहुम कानु इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून व यकूलून इन्ना लतारिकु आलिहतना लिशायरिन मजनून। सूरह साफ़ात की आयत 35-36 है। कुफार मक्का की रऊनत और तकबर का जिक्र इन आयात में। इनका हाल ये था कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो गरूर करते थे और कहते थे भला हम एक दीवाने शायर के कहने पर अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। फिर इन लोगों का सामना हुआ जिनकी हालत ये थी, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب تنہا خدا کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سواروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، یعنی ان کے چہروں پہ ناراضگی کے اثرات طاری ہوتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ یہ سورۃ زمر کی آیت 45 ہے۔ इस पे भी बात ना समझ आई, कुछ और आगे गए तो आयत सामने आ गई, मसलककुम फी सकर, क्या चीज तुमको दोजख में ले आई। वो जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे ना फकीरों को खाना खिलाते थे और हम झूठ सच बातें बनाने वालों के साथ बातें बनाया करते थे और उसे जजा को झूठ करार देते थे यहां तक कि हमें इस यकीनी चीज से साबका पेश आ गया। सूरत मुदस्सर 42-47 तक। यहां भी पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए दम बखुद खड़े रहे, फिर कानों पर हाथ रखकर कहा, ए अल्लाह इन लोगों से तेरी पनाह, मैं इन लोगों से बरी हूं, यानी मेरे अंदर ये बुराइयां नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हूं किधर, जस्तजू थी ना। अब वो कुरान के ओराक को उलट रहे थे और अपना तस्करा तलाश कर रहे थे यहां तक कि इस आयत पर जाकर ठहरे। आप में से कोई जानते वो आयत, पढ़ चुके हैं आप लोग भी, उस दिन मैंने इशारा किया था, आज रेफरेंस के साथ कोट कर रही हूँ। वाखरूना तरफू बिज़नूबिहिम खलतु अमलन सालिहन व आखर सैय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। तौबा 102। और कुछ और लोग हैं जिनको अपने गुनाहों का साफ इकरार है, उन्होंने अच्छे और बुरे अमलों को मिला जुला दिया था, यानी अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। करीब है कि अल्लाह इन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाने वाला और बख्शने वाला। इस मौके पर इनकी जुबान से बेसाख्ता ये निकला, हाँ हाँ ये है बेशक मेरा हाल। फी ही जिक्र को, अब आपको मुझे सोचना है कि मैं और आप कुरान में कहाँ हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम कुरान में ऐसी जगह पे हों कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, ना कि दिल बोझल हो जाए। अल्लाह ताला निफाक और फिस्क और कुफर से बचा दे। कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस के रख दिया और इनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया, जब इनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। जरा सा सोचिए, कोई सुनामी की तस्वीरें याद कर ले, कोई रीटा और कैटरीना सैलाब आने के वक्त देखिए, जब कोई समंदरी तूफान आता है या जलजला आता है तो लोगों की क्या हालत होती है। लोग उन सारे घरों को छोड़कर भागने लगते हैं, कहा कि आप भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे। शायद कि तुमसे पूछा जाए, कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खताबार थे, और वो यही पुकारते रहे यहां तक कि हमने इनको खिलियान कर दिया और जिंदगी का एक शरारा तक इनमें ना रहा। कितनी बड़ी हकीकत है, कितना इंसान अपने घरों से प्यार करता है, कितनी नमाजें जाया करता है इन घरों को सजाते संवारते, और कितनी ही चीजें इसने अल्लाह के नाफरमानी की जमा की होती हैं। जब पकड़ आती है उस वक्त क्या दिखता है, चंद सेकंड गौर करते हैं, हर एक अपने दामन में झांके कि मेरे साथ क्या मामला है। आप देखिए कि अल्लाह ने घर नेमत के लिए दिए थे, हमने इसको जहमत बना दिया, ये रहमत है, जहमत बन जाती कब, जब इन्हीं में खोए रहें और अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त ना मिले। اسی لیے باغ مقصد حیات سنایا جا رہا ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یوں ہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی کر لیتے ہیں. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے ایک مقصد رکھا ہے اس دنیا میں آنے کا. بس اس مقصد کو پورا کرتے کرتے دنیا جتنی ملتی ہے شوق سے لیجیے, جو چاہیں لیں, جو چاہیں بنائیں, جو چاہیں برتیں. اللہ نے آپ کے میرے لیے رکھا ہے. لیکن جو چیز نقصان دیتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول جاتا ہے. آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں, شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, دم نہیں لیتے. آپ تو نہیں تھک گئے, فرشتے نہیں تھکتے. اور ملول کہتے ہیں بور ہونے کو, آپ تو نہیں بور ہوتے. تو آپ کہیے کہ اللہ جس طرح فرشتے مسلسل آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرما. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمینی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں. ذرا سوچئے, جواب دہی بہت مشکل لگتی ہے. آپ دیکھیے کسی لیول پہ بھی جواب دہی اچھی نہیں لگتی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سب سے مشکل وہ دن لگتا تھا جب چھٹیاں گزار کے جائیں گے 3 مہینے کی, اور ٹیچر نے کہنا ہے چھٹیوں کا کام لے کر آؤ. وہ 3 مہینے کی چھٹیاں رو رو کے کام کرتے تھے کیونکہ جا کے دکھانا ہے. شوہر حساب مانگ لے, دکھاؤ پورے مہینے میں کیا خرچ کیا, کیا چھوڑا, مشکل لگتا ہے. سوچیے جب اللہ نے ہم سے جواب دہی کرنی ہے, آنا پائی کا حساب مانگنا ہے, منٹ سیکنڈ کا حساب مانگنا ہے, خون کے ایک ایک قطرے کا حساب مانگنا ہے, پسینے کے ایک ایک قطرے کا حساب مانگنا ہے, پھر اس دن اس وقت کیا دل کو لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی اس حساب کے لیے تیار کر دے.